हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पर्वत की महिमा भगवान दर्शा रहे हैं गोवर्धन धारण कर। और हालांकि उनकी महिमा असीमित है, अपरंपार है, इस विशाल उनके महिमा के समुद्र में से हम बूंद भी नहीं, केवल कुछ छींटे लिए रहे। तो कृष्ण भक्ति में लौल्यम का महत्व क्या है, और लौल्यम को समझने के लिए हम इस मुद्दे को कई रविवारों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समर्पण वो हमारी स्वीकृति का द्योतक है। स्वीकृति अर्थात एक्सेप्टेंस, और वैष्णव की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं हमारे शास्त्रों में, उनमें से एक परिभाषा वैष्णव की है सरलता। वैष्णव का अर्थ है जिसके अंदर सरलता है, और सरलता का अर्थ क्या है, जो कि भगवान को एज इट इज स्वीकार करे, यथा अनुरूप भगवान को जो स्वीकार करता है वो है सरल वैष्णव। वैष्णव तो बहुत हैं, परंतु सरल वैष्णव की परिभाषा ये है। जैसे चावल तो बहुत हैं, परंतु एक होता है बासमती चावल, वैसे वैष्णव तो बहुत हैं, वैष्णव के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये प्रश्न पूछा, किस प्रकार के वैष्णव हैं हम, ये प्रश्न हर रोज हमें पूछना चाहिए। What kind of a वैष्णव am I? स्वीकृति। अब जैसे कि गुरु पूर्णिमा हमने हाल ही में मनाई, तो गुरु का अर्थ क्या है, या गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हाल ही में ये प्रश्न मुझे मेरे यूके के ट्रिप में पूछा गया। एक हाउस प्रोग्राम था और उसमें मैंने गुरु के महत्व के विषय में कुछ कहा, केवल कुछ दो तीन लाइनें कही। तो एक नया व्यक्ति पहली दफा प्रोग्राम में आया हुआ, तो उसने प्रश्न पूछा जो कि काफी आजकल चर्चित प्रश्न है, ये कि यदि भगवान हम सब के मालिक हैं और हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब उनके सेवक हैं, तो फिर ये गुरु बीच में क्यों लाना। Why do I need a guru in between me and Krishna? कैसा लगा ये क्वेश्चन? Why do I need a guru in between me and Krishna? Why a guru has to come in between me and Krishna? तो मैंने एक ही लाइन में इस प्रश्न का उत्तर दिया। गुरु doesn't come in between you and Krishna. गुरु removes what is in between you and Krishna. ये गुरु का महत्व है। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है और हमारे जीवन में, विशेष रूप से भक्तिमय जीवन में। एक कमल का पुष्प है, तो कमल का जो पुष्प है उसकी तुलना शिष्य से की गई है, और भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। और गुरु की तुलना की गई है जिस कीचड़ में वो कमल उगता है, जहां पर पानी और मिट्टी का समन्वय है। कीचड़ है क्या? पानी और मिट्टी का समन्वय, जहां पे वो कमल उगता है, तो उसकी तुलना गुरु से की गई है। अब देखो, यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि कमल उगने के लिए क्या केवल सूर्य काफी है, तो एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, हमें कीचड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कमल हम सूर्य की रोशनी के बलबूते पर इसको उगाएंगे। और दूसरा कहता है कि सूर्य की कोई जरूरत नहीं है, ये कीचड़ी सूर्य है, कीचड़ी सब कुछ है, गुरु को ही भगवान मान रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये उदाहरण दिया गया है कि हम कमल के समान, और कमल को दोनों की आवश्यकता है। यदि सूर्य नहीं तो वो कीचड़ उस कमल को कितना उगा पाएगा, या क्या शक्ति है उसके अंदर। और यदि नीचे वो है नहीं, पानी और मिट्टी नहीं है, तो ऊपर का सूर्य जला देगा उस कमल को। सो ओनली कृष्णा 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 एंड ओनली गुरु गुरु गुरु। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बैलेंस कर दिया है, जो कि हमारे शास्त्र में उसको बैलेंस कर दिया। तो इसे कहते हैं स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है भगवान को यथा अनुरूप जो भगवान कहे हैं उसको एज इट इज अपने जीवन में पालन करना। तो हम ये मुद्दा लिए थे, हाउ आर वी बॉर्न, पैदाइश हमारी क्या है। वी आर नॉट बॉर्न अ विनर अ लूजर, वी आर बॉर्न अ चूजर। हम क्या चयन करते हैं। तो हमने ये उदाहरण लिया था, चूजिंग कृष्णा इज लाइक चूजिंग टू फ्लाई। कृष्णा डजंट प्रोमिस अ काम फ्लाइट, बट ही एश्योर्स सेफ लैंडिंग। इसलिए भगवान को चुनना अपने आप में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है ये। और कई बार ये चुनौती भगवान को चुनने के बाद समझ में आती है हमें। कई चुनौतियां हैं, पहले से समझ में आ जाता है कि भाई आप किस सरोवर में कूद रहे हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व मानना और उनको चुनना, ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमने ये उदाहरण लिया, साधना भक्ति करना इस भौतिक संसार में किसके समान है, जैसे कि एक चिकना फर्श जिस पर साबुन का पानी डाला गया है, और संभल संभल कर उस पर हम कैसे चलते हैं। ऊपर से धोती पहन रखी है हमने। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा हमने लिया था, कॉशियस ऑफ माया, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, फियर ऑफ स्लिपिंग, फोकस ऑन वॉकिंग, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तीव्रता बनाए रख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, एक है वैष्णव, एक है प्रामाणिक वैष्णव जिसके अंदर सरलता है, और एक है भक्ति और एक है तीव्र भक्ति। तो उदाहरण ये दिया गया है, जैसे कि एक तांबे का कलश है, तांबे के कलश को साफ करने जाओ, काले काले धब्बे लग जाते हैं तांबे के कलश के ऊपर, यदि उसको रोज साफ ना करो तो जो काले काले धब्बे हैं, आपको ब्रश लेकर, स्क्रॉच ब्राइट जो भी वो लेकर आपको उसको घिसना होता है, और एक है कि हल्के हाथों से केवल वो काले धब्बों को वो ब्रश दिखा रहा है, हाँ देख ले भाई, हल्के हाथों से कर रहा, कितना समय लगेगा उसे कोई अंदाजा नहीं, कितना समय लगेगा। तो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और एक है उसके ऊपर वो जोर लगा के तीव्रता से, है ना, हमारे बैकअप वाले जानते हैं उसको, कितनों ने यहां पर किसी तांबे के बर्तन को घिसा है कभी जिंदगी में, है ना, आपने अगर नहीं घिसा हो तो साधना भक्ति में कर ही रहे हैं, ये क्या है हृदय, वो तांबे के कलश के समान है, और बहुत सारे धब्बे लग चुके हैं, बड़े बड़े काले काले धब्बे लग चुके हैं। और ये हरिनाम संकीर्तन क्या है, क्या कहते हैं, स्क्रॉच ब्राइट, स्क्रॉच ब्राइट वो है हरिनाम संकीर्तन। तो आप देखो कई कई जो डिवोटीज हैं वो इस हरिनाम संकीर्तन को लेके लगे हुए हैं तीव्रता से, सुबह शाम उनका जब भी आप देखो ऐसा लग रहा है कि धब्बे सब साफ हो रहे हैं तीव्रता से, जो भी कुछ करते हैं तीव्रता से करते हैं, उसके अंदर एक जोश एक जुनून दिखता है। और कई वैष्णव आप देखो फुर्सत में है, हाँ वो पीताम्बरी भी है, वो ब्रश भी है, इमली का पानी भी है, सब कुछ अरेंज कर कर दिया हुआ है, उसको कई समय तक तो दिखाते रहते हैं, देख ले भाई, देखने से तुम लोग अगर आपस में साफ कर लो, हाँ मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो फुर्सत में भक्ति चल रही है, और वो कई बार उसको जस्टिफाई भी करते हैं, भाई अमर हैं हम तो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी श्लोक बोल के कहते हैं कि एज पर भगवत गीता, कौन हमें काट सकता है, कौन हमें गीला कर सकता है, कौन हमें सुखा सकता है, कौन जला सकता है, अरे भाई न तो हम शरीर हैं, न ये मन है, न ये अहंकार, कुछ भी नहीं है, आत्मा तो अमर है, अगला जन्म है, नित्य हैं हम, तो भाई क्या है, हम भी हैं, भगवान भी हैं, भक्ति भी है, हरिनाम भी है, क्या घाई करनी है। तो यहां पर ये जो इस भौतिक संसार में भगवान एक हमें ऐसी परिस्थिति में लाकर भक्ति करवाते हैं, तो श्रीमती राधारानी तक कह दी हैं कि मुझे प्रेरणा मिल रही है ऐसे साधकों से। तो पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि अंडर एस्टिमेट जब हम करते हैं, फॉल डाउन साधक का कब होता है, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ माया, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ कृष्णा। भगवद गीता का एक परफेक्ट श्लोक है इस फॉर्मूला के लिए, दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान पहली दो लाइन में, इस श्लोक के पहली दो लाइन में कह रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ माया, दैवी है, दुरत्यया वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, और उसके ऊपर भगवान ने कह दिया मम माया मेरी है। अगर भगवान केवल इतना ही कह देते कि ये मेरी है, तो जो भी भगवान का है वो पावरफुल है, उसके ऊपर कह दिया है कि ये दैवी भी है, दुरत्यया भी है, गुणमयी भी है, बहुत डरावना श्लोक है ना, डरावना इसलिए क्योंकि बोल कौन रहा है, हम लोग अगर कुछ कहते तो ठीक है, लेकिन बोल कौन रहा है, जो अधिष्ठात्रा देव हैं इस माया के, वो कह रहे हैं इट इज डिफिकल्ट। जैसे कोई बहुत प्रशिक्षित स्विमर है, अगर वो कहे कि भाई इस नदी में तैरना बहुत मुश्किल है ना, जिसको तैरना ही नहीं आता है उसके लिए तो सब नदी मुश्किल है। हाँ, उसको तो बाथरूम का जो टब है वो भी मुश्किल लगेगा, परंतु जो तैराक है, पहुंचा हुआ तैराक है, वो कहे भाई इसमें उतरना मत, दुरत्यया। तो कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया। बहुत डरावना श्लोक है ये, अगर भगवान केवल दो ही लाइन कहते तो। फर्स्ट टू लाइन्स टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ माया, फिर भगवान आगे की दो लाइन जो कह रहे हैं उसमें तसल्ली आ रही है हमें। क्या कहते हैं आगे? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतिते। लेकिन भगवान ने लेकिन वर्ड यूज किया है, किंतु परंतु भगवान यूज कर रहे हैं, है ये सब कुछ है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसे उसकी नैया पार कराता हूं। ये भगवान का आश्वासन, ये है पावर ऑफ कृष्णा। तो ये श्लोक में अगर हम दोनों, ये जो भी चारों लाइन, ये जो दो मुद्दे हैं, इनको अगर अंडर एस्टिमेट करें तो ये है हमारे फॉल डाउन का फॉर्मूला। अगर किसी को फॉल डाउन का फॉर्मूला लेना है तो ये है। फिर हमने आगे पिछली बार चर्चा की थी द कॉइन ऑफ मटीरियलिटी। ये संसार बनाया भगवान ने इस प्रकार से है, हर एक जो भी हम उपलब्धि मानते हैं इस संसार की, उन उपलब्धियों के साथ उसका दूसरा साइड है। जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के के दो बाजू होते हैं, उसी प्रकार से कोई भी इस संसार में बिना दुख के, बिना परेशानी के, जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि अग्नि है तो धुआं है, बिना धुएं के अग्नि नहीं। और इस संसार में हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी अग्नि निर्माण करें बिना धुएं की, अग्नि संभव नहीं, इसलिए लगे हुए हैं। और फिर जिंदगी का तजुर्बा हमें क्या सिखाता है, यदि हम सीख रहे हैं तो ये सिखाता है। क्या सिखाता है? न तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी खुशी को मैं खरीद पाया, न मैं कभी मेरे दुखों को बेच पाया। लोग किसका प्रयास कर रहे हैं? जीवन भर प्रयास यही कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से खुशियों को खरीद लूं और मेरे दुखों को बेच दूं। ये चल रहा है ट्रांजैक्शन। तो जिंदगी का तजुर्बा ये हमें सिखाता है कि न तो मैं मेरी खुशियों को कभी खरीद पाया, न मेरे दुखों को कभी बेच पाया। फिर मैं प्रश्न पूछता हूं कि मैं कमा क्यों रहा हूं? कमा क्यों रहा हूं? न तो मैं खरीद पा रहा हूं, न मैं बेच पा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूछना। तो ये सारी चीजें, प्लेजर कम्स विथ कॉन्सिक्वेंसेस, पोजेशंस दे कम विथ अ प्राइस, सक्सेस कम्स विथ एनवी, पीस कम्स विथ एक्सपायरी डेट। तो आज हम हमारा एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का जो मुद्दा है उसे आगे बढ़ाएंगे। कुछ उदाहरण आज हम लेना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा, और देखिए इसमें यह समझना आवश्यक है कि हमारी इच्छा या सर्वसाधारण किसी की इच्छा और भगवान की इच्छा, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, कोई तुलना नहीं है। कृष्णाज विल इसलिए सरस्वती ठाकुर हर समय कहा करते थे, जब भी उनको कोई कुछ पूछता कि आप यहां पर आ पाओगे, आप ये सिद्ध कर पाओगे ये प्रोजेक्ट, हर समय वो क्या किस प्रकार से उत्तर देते, कृष्णा विलिंग। कोई अगर उनको बुलाता कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए आओगे, वो कहते कृष्णा विलिंग। सुबक महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछा कि ये जो हमारे हृदय के अनर्थ हैं, ये कभी इनसे छुटकारा मिलेगा? प्रभुपाद चलते गए, नेवर, कभी नहीं। तो बहुत वो डिप्रेस हो गए, प्रभुपाद कह रहे हैं नेवर। दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक में वापस सुबक महाराज पूछते हैं, प्रभुपाद आज आप दूसरा आंसर देना चाहेंगे? इस आशा से उन्होंने पूछा, कभी ये अनर्थ से छुटकारा मिलेगा हमें? प्रभुपाद ने कहा नेवर, दूसरे दिन भी नेवर बोल दिया। और ये अपने होप्स नहीं छोड़े थे, तीसरी बार फिर से तीसरे दिन इन्होंने पूछा प्रभुपाद से, कभी ये अनर्थों से छुटकारा मिलेगा? फिर प्रभुपाद ने तीसरी दफा कहा गोविंद इच्छा। फाइनल आंसर क्या है? मदन गोपाल इच्छा, उनकी इच्छा। और हम लोग ये सब जो इतनी भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनकी इच्छा को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी इच्छा को हमारी इच्छा बनाने का प्रयास करें। वननेस क्या है? प्रभुपाद ने डिफाइन किया, व्हाट इज वननेस? टू मेक अवर इंटरेस्ट द सेम एज कृष्णाज इंटरेस्ट। उल्टा भौतिकतावादी जीव करना क्या चाह रहा है? उल्टा करना चाह रहा है कि भगवान आप, मैं जो इंटरेस्ट ले रहा हूं आप उसमें इंटरेस्ट लो ना, मुझको जिसमें इंटरेस्ट है भगवान को उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो हम उदाहरण लेंगे कि भगवान की इच्छा को एज इट इज स्वीकार कर किसने एक्सेप्टेंस के द्वारा अपना कमिटमेंट और अपना एंथुजियाज्म दिखाया, और ठीक विपरीत उसके उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण गांधारी और कुंती का है कि दोनों माताएं और दोनों की स्थिति एक समान। कुरुवंश में गांधारी को जब समझ में आया कि मेरा दुर्योधन वो लेट पैदा हो रहा है, अपने गर्भ को पीटा गांधारी ने, द्वेष के कारण भगवान की उस इच्छा को गांधारी स्वीकार नहीं कर सकी। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कृष्णाज विल। पैदा होने से पहले ही विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को कह दिया था कि इसको पैदा मत करना। पैदा हो गया था, उसके पश्चात जो दुर्योधन ने कारनामे किए, विशेष रूप से वो जो द्यूत क्रीड़ा जिसके अंदर द्रौपदी का अपमान हुआ, उस समय विदुर को सहन नहीं हुआ, विदुर खड़े हुए और विदुर ने कह दिया कि इसी वक्त इस निर्लज्ज दुर्योधन को बंदी बनाओ और इसे खत्म करो। विदुर ने कहा इस निर्लज्ज दुर्योधन को इसी वक्त खत्म करो, नहीं तो ये पूरे कुरुवंश को लेकर डूबेगा। ये दुर्योधन पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण एकमेव यही है। परंतु स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण विदुर के द्वारा बोल रहे थे नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक विपरीत कुंती महारानी, कुंती महारानी का जीवन यदि आप पढ़ोगे तो बचपन से, जब वो 13 वर्ष की थी, उससे भी पहले उनके पिता ने कुंती को कुंती भोज को दे दिया था। तो कभी अपने माता पिता के घर पर नहीं रही, वो किसी और के घर पर, पराए घर पर रही, वहीं पर पली बड़ी। 13 वर्ष की थी। दुर्वास मुनि की सेवा में कुंती छोटी सी 13 वर्ष की उनको लगाया। अब आप लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि दुर्वास मुनि के बारे में आप जानते नहीं। दुर्वास मुनि कोई सरल, सौम्य, पेशेंट, टॉलरेंट वैष्णव नहीं सन्यासी थे। वो तांत्रिक थे, तांत्रिक। और उनका जो नाम है ना दुर्वास, दुर्वास का मतलब है दूर वास करो जिससे। सोचिए क्या नाम है, जिनसे दूर रहो, क्योंकि वो कब किसको वरदान दे देंगे और कब किसको शाप दे देंगे कोई ठिकाना नहीं। एक मुद्गल ऋषि थे, तो मुद्गल ऋषि वो बहुत ही वानप्रस्थी थे। वो अपनी बीवी के साथ वानप्रस्थ का पालन कर रहे थे और बहुत स्ट्रिक्ट वो व्रत रखते थे अपना, कि इतने साधना के बाद ही वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ अन्न लेते थे। तो दुर्वास मुनि उस समय पहुंचते थे जब इनकी साधना पूरी हो जाती थी और ये अब बस अपना पारण करने वाले हैं, उसी समय पहुंचते थे कि जो भी है मुझे खिलाओ। मुद्गल ऋषि देते थे इन्हें और ये उठा के फेंक देते थे इधर उधर सामने चिढ़ाने के लिए मुद्गल ऋषि को। बस वो आते इसलिए ही थे, उनको चिढ़ाने के लिए, उनको इरिटेट करने के लिए आते थे। अभी सोचो कि आप ऐसे व्यक्ति को कितने प्रेम से कुछ प्रसाद खिलाना चाहोगे या सेवा करना चाहोगे, जिनका नाम है दूर रहो। हाँ? श्रीमान दूर रहो। तो ऐसे दुर्वास मुनि की सेवा में कुंती महारानी को कुंती भोजने लगाया और प्रसन्न हुए दुर्वास मुनि कुंती महारानी की सेवा से। और उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा था, जबरदस्ती वरदान देकर चले गए। और वो जो वरदान देकर जाते हैं लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई चॉइस है, नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं लिए तो फिर शाप। तो उनको मंत्र दे दिया कि इस मंत्र के द्वारा तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हो, उनको बुला सकते हो। अब 13 वर्षीय लड़की, उसको जब इस प्रकार का वरदान मिल जाए तो वो ऑब्वियसली उसको टेस्ट करना चाहेगी ना। तो कुंती महारानी को कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने सूर्य, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा दिखते हैं ना, बाकी तो देवता ऐसे दिखते नहीं, तो सूर्य ऐसे देवता जो दिखते थे उनको, तो बोला ठीक है सबसे पहले जो दिख रहे हैं उनको टेस्ट करते हैं कि मंत्र काम करता है क्या। तो आ गए सूर्यदेव। अब ये सूर्यदेव आ गए, ठीक है, इनको दर्शन हो गया सूर्यदेव का। तो कुंती महारानी कहती काम किया, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, मैं अपेक्षा नहीं कर रही थी कि आप व्यक्तिगत रूप से आ जाओगे ऐसे। सूर्यदेव ने कहा अब तो मुझे मेरी तरफ से कुछ वरदान तुम्हें देना होगा। तो कुंती महारानी सोच रही कि अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे वरदानों क्या जरूरत है, एक वो दुर्वास मुनि देकर चले गए और मैं उसके लिए नहीं सेवा कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे स्टेटस को का सवाल है। सूर्यदेव बोले मैं खाली हाथ जाऊंगा, हाँ जगह साई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, देना कुछ तो लेना पड़ेगा। कर्ण, सोचो 13 वर्षीय बालिका को एक बच्चा देकर चला गया सूर्यदेव। ये शुरुआत है कुंती महारानी की। और उस समय ये नहीं था कि भाई जाके अबॉर्शन करा दो, हाँ बच्चा गिरा दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहां से शुरुआत कुंती महारानी के दुखों की, किस उम्र से? 13 वर्ष की उम्र से। और फिर महाभारत हम इतना पढ़े हैं, क्या 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 कुंती महारानी को दुख सहने पड़े, अपने स्वयं के पुत्र, अपने स्वयं के पोते, अपने स्वयं की पुत्र वधु, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो कुंती एक बार भी, एक श्लोक नहीं कुंती महारानी का कहीं पर कोई कंप्लेन किया है, टोटल ऑपोजिट गांधारी का। कभी कुंती महारानी का कोई कंप्लेन नहीं की कि भगवान कम से कम आप और कौन है, वो रिश्तेदार है भगवान की, बुआ है, परंतु कभी कंप्लेन, उल्टा और मांग रही है विपदा संतु तस्वत तत्र तत्र कि और दुख दीजिए, और दुख मांग रही। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कृष्णाज विल के एक्सेप्टेंस का। इसके पश्चात दूसरा एग्जाम्पल है कृतद्युति अगेंस्ट द्रौपदी। कृतद्युति कौन थी? महाराज चित्रकेतु, जिनकी 1 करोड़ पत्नियां, ये सब संभव हुआ करता था पहले के युगों में। अभी तो 1 करोड़, 1 मुश्किल है, 1 करोड़ सही में करोड़पति जिसको कहेंगे, 1 करोड़ पत्नियों का जो पति करोड़पति हुआ, 1 करोड़ पत्नियां होने के बावजूद कोई इशू नहीं। आजकल ये बोलते ना इशू नहीं है, फिर इशू हो जाता तो इशू बन जाता है, इशू का इशू बन जाता, बहुत इशू हो गया अभी तो। हम वो स्टोरी जानते हैं कि फिर फाइनली कृतद्युति मां बनती है, हर्ष शोक की मां कृतद्युति। तो बाकी द्वेष करते हैं कृतद्युति से इतना। अब देखो कि ये लोग सब स्त्रियां, और वो भी कलयुग की नहीं, ये इनके अंदर इतना द्वेष कि हर्ष शोक को विष देकर मार डालती हैं। अभी अभी पैदा हुआ बालक, तो जब कृतद्युति को ये समझता है कि मेरे एकमात्र बेटे को मार डाला, तो सबसे पहले कृतद्युति गाली देती है विधाता को, भगवान को। बहुत नॉर्मल है ना, जब हम किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं तो सबसे पहले हम अपशब्द कहते हैं भगवान को, तो भगवान को गालियां देना शुरू की कृतद्युति। और ठीक इसके विपरीत द्रौपदी, द्रौपदी के 5 पुत्रों की नृशंस तरीके से हत्या किसने की? अश्वत्थामा। सर धड़ से अलग कर दिया सोते हुए। अब ठीक है, ये मान ले, ये भी कोई मान लेता कि यदि 5 पांडव, उनकी अगर रणभूमि पर इस प्रकार से हत्या हुई होती, परंतु इनकी क्या गलती थी? द्रौपदी के 5 पुत्रों की क्या गलती? सबसे पहले द्रौपदी का जीवन यदि देखें तो द्रौपदी का भी जीवन, हमारे महाभारत के टीकाकार तो ये कहते हैं कि द्रौपदी का जीवन कुंती महारानी के जीवन से भी ज्यादा विकट रहा। विवाह, अब देखो स्वयंवर में अर्जुन जीते, द्रौपदी को अर्जुन जीते और द्रौपदी की इच्छा और द्रुपद महाराज की भी इच्छा कि अर्जुन के साथ विवाह होना चाहिए। तो अर्जुन जीत कर लाए। अब अर्जुन का चरित्र देखिए कि अर्जुन जीत कर लाए द्रौपदी को और फिर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आप द्रौपदी से विवाह कीजिए। अच्छा, सबसे पहले द्रौपदी की सुंदरता, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा आपके अंदर। द्रौपदी हाँ, मतलब आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तो द्रौपदी की सुंदरता बताई गई है कि द्रौपदी कितनी सुंदर थी। अज्ञातवास में द्रौपदी सैरेंद्री बनी थी, आपको अगर थोड़ा महाभारत का ज्ञान है तो। और विराट जो राजा, विराट राजा की पत्नी सुदेक्षिणा, सुदेक्षिणा की दासी बनी थी द्रौपदी सैरेंद्री के रूप में। और इतनी सुंदर द्रौपदी थी कि दासी के रूप में सुदेक्षिणा वो द्रौपदी से कहती है कि मेरे पति के सामने तू कभी मत जाना, हाँ उसकी नियत फिसल जाएगी। इतना वो द्रौपदी की सुंदरता से डरती थी वो सुदेक्षिणा। यहां तक बताया गया है कि द्रौपदी को जब स्त्रियां नदी के तट पर देखती थी सुबह के समय स्नान करते हुए, तो ये स्त्रियां द्रौपदी की सुंदरता को देखकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि हम स्त्रियां क्यों हैं, हम पुरुष क्यों नहीं, क्योंकि पिछले युग की बात है ये। तो स्त्रियां प्रार्थना करती थी, वाई आर वी विमेन, ओ ऑलमाइटी काइंडली टर्न अस इनटू मेन। इतनी सुंदर द्रौपदी, और ऐसी द्रौपदी जिसको जीतने के लिए पूरे विश्व के बड़े बड़े धुरंधर क्षत्रिय गए थे वो स्वयंवर में, यहां तक कि बुढ़ऊ जरासंध भी गया था। हाँ, बूढ़ा हुआ जरासंध गया। सोचो उस उम्र में वो द्रौपदी चाह रहा है वो। सब पहुंचे हुए थे वहां पे और कर्ण के अलावा कोई उस धनुष को उठा तक नहीं पाया। तो अर्जुन जीत कर लाए और अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप मुझसे, युधिष्ठिर महाराज कहे कि अर्जुन भाई तुम जीत कर लाए हो। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, आप मुझसे ज्येष्ठ हो, भीम मुझसे ज्येष्ठ हैं, मैं आपके पहले कैसे विवाह कर सकता हूं। कल्चर देखो उन भाइयों के बीच में। तो यहां पर द्रौपदी हैं और द्रौपदी के सामने अब ये डिस्कशन चल रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि पति कौन बनने वाला है मेरा। और ये लोग ब्राह्मण के रूप में थे उस समय, अज्ञातवास में थे, लोग ब्राह्मण के रूप में थे, इसलिए किसी द्रुपद भी पहचान नहीं पाए। द्रुपद चाहते थे कि अर्जुन जीत कर ले जाए। द्रुपद अभी तक डाउट में थे कि पता नहीं कौन ये ब्राह्मण वो पराक्रम कर सका, वीर शुल्क उसका नाम था, वीर शुल्क वो लेकर द्रौपदी को चला गया है, पता नहीं कौन है, मैं तो अर्जुन चाहता था, पता नहीं वो कौन ब्राह्मण ले गया है। तो द्रुपद डाउट में थे कि वो ब्राह्मण है कौन, इसलिए वो धृष्टद्युम्न को भेजते हैं कि तू छुप के जाकर देख कर आ कि हमारी बेटी गई कहां है, किनके घर पर गई है। तो धृष्टद्युम्न छुप कर इनका वार्तालाप सुनते हैं पांडवों का। तो वार्तालाप सुनते हैं तो वार्तालाप से समझ में आ जाता है कि ये क्षत्रिय ही हैं, क्योंकि उनके वार्तालाप में सब इसका डिस्कशन चल रहा था, अस्त्र शस्त्र का डिस्कशन। तो उस समय वार्तालाप से समझ में आ जाता था कि वो कौन से वर्ण का है, कि मार्केट का भाव क्या चल रहा है। हाँ, अगर ये वार्तालाप है मतलब वो वैश्य बनिया है, अगर शास्त्र के ऊपर डिस्कशन चल रहा है मतलब ब्राह्मण है, ये लोग का डिस्कशन केवल अस्त्र शास्त्र ये इसके ऊपर डिस्कशन, तो मतलब वो समझ गया ये तो क्षत्रिय है, बोनोफाइड क्षत्रिय है। एकांत में जो डिस्कशन चल रहा है इनका, मतलब उसमें समझ में आ रहा है कि इनका वर्ण क्या है। और फिर द्रुपद महाराज को जाके रिपोर्ट करते, द्रुपद महाराज जब इनको बुलाते हैं तो इन वो भी एक टेस्ट रखते हैं, वो अलग अलग कक्ष, एक कक्ष में पकवान, एक कक्ष में शास्त्र, एक कक्ष में कुछ अलग अलग पहनने के आभूषण वगैरह, और एक कक्ष में अस्त्र शस्त्र। तो सारे पांडव वहां पर उसी कक्ष में जाके देखते हैं कि नए नए अस्त्र शस्त्र कौन से हैं, ये सब कुछ, जैसे ब्रह्मचारी नई किताब कौन सी आई है इस्कॉन के अंदर। एक जमाना था पहले तो नई किताब के पीछे ब्रह्मचारी भागते थे, अभी नया मॉडल सेलफोन का कौन सा आया है। तो द्रुपद समझ गए, फिर द्रुपद तो वो खैर वो अलग स्टोरी है, वो कभी और हम सुनाएंगे द्रुपद और पांडवों की। तो यहां पर युधिष्ठिर, अभी ये चल रहा है कि वो एक अलग स्टोरी, जब कुंती महारानी के पास वो गए और कुंती महारानी कहा कि बांट लो आपस में, परंतु युधिष्ठिर महाराज के सामने अब ये एक दुविधा कि द्रौपदी से विवाह कौन करेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप मुझसे ज्येष्ठ हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम कह रहे हैं कि आप जीत के लाए हो तो हम क्यों, तो दोनों सही हैं अपने आप में। फिर फाइनली युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखते हैं, और युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज है, द्रौपदी की ओर देखते हैं और गंभीर वाणी में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हम पांचों विवाह करेंगे इससे। ये जब युधिष्ठिर ने कहा, जो कि कभी न सुना गया न कभी देखा गया, हां एक पति के कई पत्नियां ये तो कॉमन था उस समय, परंतु एक पत्नी के पांच पति ना, ये नहीं सुना गया था। तो जब द्रुपद महाराज को यह समझ में आया, तो द्रुपद महाराज आप बोल भी कैसे सकते हो युधिष्ठिर महाराज को कहते हो, तो युधिष्ठिर महाराज ने जो लाइन कही अभी बहुत पावरफुल, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यदि मेरे मुख से ये बात निकली है, मेरे जहन में ये बात आई है, मतलब ये धर्म ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर से अधर्म निकल ही नहीं सकता। क्या कॉन्फिडेंस है उनका, कि मेरे अंदर से अधर्म की बात निकल ही नहीं सकती, तो यदि स्पॉन्टेनियसली मैंने ये बात कही है तो ये धर्म ही होना चाहिए। जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला, इनके विषय में बताया गया कि जानते हैं ना दुष्यंत और शकुंतला, तो शकुंतला विश्वामित्र मुनि और रंभा इनकी बेटी, तो विश्वामित्र मुनि मेनका, हाँ मेनका, मेनका पक्का, अच्छा तो शकुंतला वो विश्वामित्र मुनि इनके साथ नहीं रहती थी, वो अपने कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, और दुष्यंत महाराज वो शिकार करते करते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और शकुंतला को देखकर दुष्यंत महाराज के अंदर शकुंतला से विवाह करने की इच्छा हुई। तो शकुंतला कहती है तो मैं तो केवल कण्व ऋषि की बेटी हूं, दुष्यंत महाराज कहते हैं कि सवाल ही नहीं है, तुम ऋषि पुत्री हो ही नहीं सकती। वो कहती क्यों, क्योंकि यदि मेरा दिल आ रहा है आपके ऊपर तो आप क्षत्रिय होने चाहिए। कॉन्फिडेंस देखो, यदि मैं आकर्षित हो रहा हूं तो आप क्षत्राणी होनी चाहिए, हो ही नहीं सकता है कि आप, तो देखो उस समय ज्योतिषी ये सब हॉरोस्कोप कुंडली वुंडली की जरूरत ही नहीं थी, उनके अंदर से स्फूर्ति आती थी, स्फूर्तियाली। तो ये सारे उदाहरण हैं कि उसका वजन कितना था। तो सोचो फिर, अभी हम लोग द्रौपदी के ऊपर हैं कि द्रौपदी, अब देखो कुंती महारानी जो कह दिया कि भाई तुम जो जीत कर लाए हो बांट लो आपस में। आपने कभी महाभारत में या श्रीमद् भागवत में जहां कहीं पर भी द्रौपदी और कुंती का वर्णन है, कभी आपने ये सुना है सास बहू में कुछ हुआ है? हाँ, कुंती महारानी और द्रौपदी एक आइडियल एग्जाम्पल है सास बहू के लिए। और आजकल हम देखते हैं कि बहू इंडिपेंडेंटली ठीक है, सास इंडिपेंडेंटली ठीक है, जैसे ही वो एक साथ आते हैं पता नहीं क्या केमिस्ट्री, हाँ क्या केमिस्ट्री उनके अंदर शुरू हो जाती है सास बहू। एक बार एक बहू क्या ये जोक था क्या? कलयुग में ये भी जोक हो जाता है। तो एक बार एक बहू एज यूजुअल सास के साथ उसकी नहीं जमती, 36 का आंकड़ा, पति के साथ 36 गुण मिल जाते हैं लेकिन सास के साथ 36 का आंकड़ा होता है, दोनों में अंतर है, 36 गुण मिलना और 36 का आंकड़ा। तो बहू का सास के साथ 36 का आंकड़ा था। तो अचानक एक दिन सुबह सुबह बहू जो है भरा हुआ दूध का ग्लास लाके सास को ऑफर कर रही, प्लीज आज आप दूध पीजिए गरम केसर बादाम का। तो सास एकदम थोड़ा शक में चली जाती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये अचानक इतना बदलाव कैसे। फिर दोपहर में भी दूध, शाम को भी दूध का ग्लास, दिन में 3 बार दूध का ग्लास। तो सास फिर फाइनली पूछती है कि आज क्या भाई, आज बात क्या है? तो बहू कहती है आज नागपंचमी है। तो दूध भी है तो समझ में नहीं आएगा कि उसके पीछे प्रयोजन क्या ऑफर करने का। ये एक आईएएस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया एक व्यक्ति को, काफी मतलब सोच में डालने वाला क्वेश्चन था, इसलिए उसको आईएएस लेवल का क्वेश्चन कहते हैं। तो उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो उसको ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम पिकनिक पर गए हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी सास है, पिकनिक पर हो और एकदम अच्छे सुंदर जंगल में हो, अचानक एक शेर झाड़ियों से आता है और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पर अटैक करता है, अब बताओ किसे बचाओगे? तुम्हारे लिए 3 मिनट है उत्तर देने के लिए, किसे बचाओगे? तो कहता है 3 मिनट क्या जरूरत है, मैं अभी बता देता हूं। अच्छा, मतलब तुमने इतनी जल्दी सोच लिया किसे बचाओगे? हाँ ऑब्वियसली, अरे कोई भी, ये तो इतना आसान उत्तर है इस सवाल का, ऑब्वियसली शेर को बचाऊंगा। वैसे भी तादाद कम हो रही है उनकी। तो कभी द्रौपदी और कुंती के बीच आप नहीं सुनोगे कि उनके अंदर कभी मतभेद भी हुआ। यहां तक द्रौपदी के विषय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां वो द्रौपदी के पास आई काउंसलिंग के लिए। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। किनकी पत्नियां? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पत्नियां द्रौपदी के पास जाती हैं और द्रौपदी से काउंसलिंग ले रही हैं और द्रौपदी को पूछती हैं, क्या कहती हैं वो, कि भाई हम 16108 हैं और हमारे एक पति हैं और हम 16108 मिलकर भी हमको लगता है कि हम उनको खुश नहीं रख पा रहे हैं। और द्रौपदी को कहती है कि आप एक हो और आपके पांच पति हैं, कैसे आप इन पांचों को, और पांचों की अलग अलग वैरायटी है, युधिष्ठिर पूर्ण सत्वगुण में शांत स्वभाव के, हर समय सत्य बोलने वाले, उस प्रकार वो उनका साइकोफिजिकल नेचर। भीम पूरा ऑपोजिट, एग्रेसिव, रेस्टलेस, इंपल्सिव, और अर्जुन इनके बीच में, इनको मीडिएट करने वाले, इनके बीच में दोनों का ब्लेंड इनके अंदर, अर्जुन के अंदर। नकुल सहदेव उनके अलग वैरायटी। इन सब को एक साथ रखे द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी के विषय में द्रौपदी और कृष्ण इनका संवाद बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। ये लोक प्रमाण है। तो लोक प्रमाण के अनुसार एक दफा केवल कृष्ण और द्रौपदी बैठे हुए थे एकांत में। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि कृष्ण बताओ, तुम्हारे लिए ये जो मेरे पांच पति हैं, पांच पांडव जो हैं, ये क्या लगते हैं, क्या लगते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं वो मेरे लिए सूर्यमुखी के पुष्प के समान है, है ना, सनफ्लावर, सूर्यमुखी का पुष्प उसके समान है। अर्जुन जो हैं वो कमल के पुष्प के समान है। भीम जो हैं वो गेंदा का पुष्प, क्या कहते हैं यहां पे, गेंदा समझते हैं ना, झेंडू। तो भीम गेंदे के पुष्प के समान, नकुल मोगरे के पुष्प के समान है और सहदेव चंपक पुष्प के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से तुलना की पांचों पांडवों की। और फिर द्रौपदी पूछती हैं, तो फिर मैं क्या लगती हूं इनके कनेक्शन में? तो भगवान ने जो उत्तर दिया, द्रौपदी की आंखों में आंसू आए। भगवान कहते हैं द्रौपदी से कि यदि युधिष्ठिर सूर्यमुखी पुष्प के समान है, अर्जुन कमल, भीम गेंदा और मोगरा और चंपक नकुल सहदेव हैं, तो द्रौपदी तुम उस धागे के समान हो जो इनमें जाकर एक माला बनाती है, वो धागा तुम उस धागे के समान हो। सो द्रौपदी वॉज अ यूनाइटिंग प्रिंसिपल फॉर दीज डिफरेंट साइकोफिजिकल नेचर्स। फिर भगवान द्रौपदी से प्रश्न पूछते हैं कि अब मैं तुमको द्रौपदी प्रश्न पूछता हूं कि मुझे तुम क्या मानती हो? अब तक प्रश्न द्रौपदी का चल रहा था, तो अब भगवान द्रौपदी से प्रश्न पूछते हैं कि द्रौपदी तुम बताओ कि तुम और पांडवों के संदर्भ में मुझे क्या मानती हो? तो द्रौपदी जो जवाब देती है, भगवान बेवाक रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है, आपने ये सारे पुष्पों का नाम लिया, आपने मुझे धागा कहा है जो कि पिरोए हुए हैं इन सब पुष्पों के अंदर से गई है, मैं गई हूं, परंतु ये पुष्प और ये माला किसी काम के नहीं यदि इनके अंदर सुगंध नहीं है। इसलिए भगवान आप सुगंध हो, आप हमारे जीवन के सुगंध हो। मेरे अनुभव में आज तक मैं कभी किसी कोई माता जी या कोई छोटी बच्ची किसी से नहीं मिला जिसका नाम द्रौपदी है। मेरे ख्याल से बहुत डर डर के लोग, मैंने तो कभी देखा नहीं कि किसी का नाम द्रौपदी रखा है, क्योंकि द्रौपदी की पर्सनैलिटी, उनका जीवन ऐसा है कि लोग डरते हैं नाम रखने से, द्रौपदी का नाम। हाँ, इस्कॉन के अंदर दीक्षित नाम आपको मिलेगा, द्रौपदी देवीदासी। एक मैं अपने भक्तिवेदांत मैनर का एक प्रभुपाद मेमोरीज का बुक पढ़ रहा था, तो उसके अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग पास टाइम, प्रभुपाद रह रहे थे टिटनहर्स्ट एस्टेट, जो कि बीटल्स का, जॉन लेनन का, वहां पर प्रभुपाद रह रहे थे लंदन में। तो वहां पर प्रभुपाद ने दीक्षा दी एक भक्त डेव और भक्तिन डेनिस, इनको प्रभुपाद ने दीक्षा दी। तो भक्त डेव को दीक्षा में नाम मिला देवदत्त दास, और भक्तिन डेनिस को नाम मिला द्रौपदी देवीदासी। और फिर प्रभुपाद ने इनका विवाह भी कराया। ये लोग ब्रिटिश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो प्रभुपाद ने इनका विवाह कराया। और प्रभुपाद यज्ञ कर रहे हैं, ये लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं दोनों, और प्रभुपाद पुरोहित बने हुए विवाह का यज्ञ प्रभुपाद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने देखा यज्ञ में ये द्रौपदी देवीदासी के गोद में एक बच्चा है। तो प्रभुपाद ये गए, हूज बेबी इज दैट? तो वो भक्तिन डेनिस कहती है, माय बेबी। सोचो प्रभुपाद को क्या क्या वहां पर देखना सहना पड़ रहा था। तो प्रभुपाद बोले, इन इंडिया बेबी कम्स आफ्टर मैरिज। तो वो लोग एक दूसरे को देखे, अच्छा रियली? प्रभुपाद बोले, कीप दैट बेबी समवेयर एल्स। तो फिर वो बेबी को और कहीं जाके वो रखकर आई, और फिर प्रभुपाद ने पूरा विवाह किया और फिर कहा, नाउ ब्रिंग दैट बेबी। नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू होल्ड दैट बेबी। तो सोचो कि अब ये प्रभुपाद कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हम 60s-70s की बात कर रहे हैं। आजकल हालत क्या है, जैसे एक स्त्री का तीसरा विवाह चल रहा था, थर्ड टाइम मैरिज कर रही थी वो, तो फेरे ले रही थी, तो जो पिछले शादी से बच्चे, दो बच्चे बैठे हुए थे वो मंडप में, तो एक रोने लगा। तो फेरे लेते समय इसने जो बोला, वो पीछे जो पति था वो भी फेरे ले रहा था, वो बेहोश हो गया सुन के। वो जो बच्चा रो रहा था, तो फेरे लेते समय इसने उस बच्चे को कहा, चुप हो जाने तो अगली बार नहीं लाऊंगी। तो वो पीछे बेहोश हो गया, अगली बार नहीं लाऊंगी मतलब। तो सोचो प्रभुपाद को क्या क्या सहन करना पड़ रहा था। द्रौपदी, हाँ, तो हम, मुझे याद आ गया, द्रौपदी नाम मैंने कभी किसी का सुना नहीं, कुंती तक नहीं सुना ऐसा, कुंती भी नाम नहीं रखते, डरते हैं कुंती, यहां तक लोग, मैंने यहां तक सुना है कि एक शख्स ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखा है, मुंबई में, सही में दुर्योधन रखा है और घर का नाम यमालय। सीरियसली, ये ट्रू फैक्ट है। आजकल रखने की भी जरूरत नहीं। तो द्रौपदी का जो जीवन, द्रौपदी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण के विल का एक्सेप्टेंस, जो वो दिन असत सभा का दिन जब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पर लगाया या लगाया गया, युधिष्ठिर को, अब देखो महाभारत में बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार हम सोचते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं, धर्मराज हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को जब एक बार व्यासदेव जी ने कहा था कि युधिष्ठिर आगे चलकर तुम्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए, इस कारण के वजह से करोड़ों की जान जाएगी, उस समय युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रण लिया था कि मेरे जो सीनियर्स हैं अग्रज, वो मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो इसलिए जब अभी उस समय जो भी वो लोग वचन लिया करते थे उसका पालन किया करते थे, ऐसा नहीं कि वचन लिया उसके बाद में फिर बोले कि वो तो उस समय लिया था, अभी क्या उसका, मैं भूल गया, लिया तो क्या हो गया। परंतु युधिष्ठिर महाराज ने वचन लिया था कि मेरे सीनियर्स जो मुझे कहेंगे मैं वो करूंगा, इसलिए वो द्यूत क्रीड़ा के लिए मना नहीं कर सके। और द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर महाराज का हारना ये सिद्ध करता है कि युधिष्ठिर महाराज को द्यूत खेलना नहीं आता था और ये शकुनी जानता था और दुर्योधन जानता था। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के अपब्रिंगिंग से समझ में आ रहा है यहां पर कि युधिष्ठिर महाराज का अपब्रिंगिंग क्या था। इतने संस्कारी युधिष्ठिर महाराज थे कि ये द्यूत जैसी क्रीड़ा उनको कुछ पता नहीं था। युधिष्ठिर महाराज वॉज अ स्टूपिड एज फार एज गैम्बलिंग मैच वॉज कंसर्न, नहीं आता था उनको खेलना। और दुर्योधन क्योंकि बचपन से हट कर 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 धृतराष्ट्र से सब कुछ ले लेना ले लेना, इसलिए आजकल अगर बच्चे को कंप्यूटर चलाना आता है तो माँ बाप को बहुत खुश नहीं होना चाहिए, उल्टा सचेत हो जाना चाहिए कि अगर इसको इस उम्र में ये सब कुछ आ रहा है तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। तो द्रौपदी, अब युधिष्ठिर महाराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि द्रौपदी को, इसलिए लोग जो इतना कर्ण कर्ण करते हैं ना कि कर्ण के साथ नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ कर्ण के साथ, तो महाभारत में व्यासदेव जी बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण कर्ण के वध के समय याद दिलाते हैं कि कर्ण तू धर्म की बात कर रहा है, तू धर्म के प्रश्न मुझसे पूछ रहा है। उस द्यूत क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार चुके थे तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का जो घटिया प्रपोजल दुर्योधन तक के जहन में नहीं आया था, शकुनी तक नहीं उसने सोचा था, तूने आइडिया दिया था। वो किसने? कर्ण ने। और कर्ण ने जो अपशब्द किसको कहे? द्रौपदी को कहे, वो ऐसे कि पूरी असत सभा में सबके सामने कर्ण द्रौपदी से कहता है कि इस द्रौपदी में और एक वैश्या में अंतर क्या है। कौन कहता है ये? कर्ण कहता है कि जैसे एक वैश्या विभिन्न पुरुषों के साथ संग करती है वैसे ही है ये द्रौपदी, और ये सब कुछ उस भरी सभा में द्रौपदी को सुनना पड़ा। इतना ही नहीं युधिष्ठिर महाराज को फोर्स किया गया कि द्रौपदी को पूरा दांव पर एक साथ नहीं लगाना है तुमको, द्रौपदी के एक एक अंग को विश्लेषित कर कर दांव पर लगाना है। सोचो कि ये सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई किस हद तक किसी को जलील कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज वॉज फोर्स टू डिस्क्राइब ईच लिंब ऑफ द्रौपदी इन फ्रंट ऑफ दीज लस्टी मैन। पति अपने पत्नी के विषय में ये सब कुछ ऐसे लोगों के सामने कहना पड़ रहा है, ये सुन के हमको कितना क्रोध आ रहा होगा। सोचो द्रौपदी किस दौर से गुजर रही थी। इतना होने के बावजूद कभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के आगे कंप्लेंट नहीं किया कि भगवान मेरे साथ क्यों ये सब, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा, Why me? और घसीटते हुए बालों से खींचते हुए दुशासन, और द्रौपदी के सारे पति वहां पर मौजूद, भीष्म पितामह वहां पर, द्रोणाचार्य वहां पर, कृपाचार्य, ये सारे वहां पर मौजूद और सब चुप्पी लगाए हुए। और धृतराष्ट्र तो इतना निर्लज्ज कि धृतराष्ट्र जो अंधा वो बगल में बैठे विदुर को पूछता है, अब क्या हो रहा है बताओ मुझे, क्या हो रहा है बताओ, क्या पांडव सब कुछ हारे कि नहीं। जब द्रौपदी के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा था उस समय कोई आगे नहीं आया, केवल भगवान श्री कृष्ण उनके अलावा, और कोई आगे नहीं आया द्रौपदी की सहायता करने के लिए। और इसलिए उस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रण लिया और वो आगे चलकर द्रौपदी से और पांडवों से कहते हैं कि जो ये अपमान द्रौपदी का जो हुआ उस असत सभा में, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि द्रौपदी इस समय मैं अकेला, जो मेरी अंदर की इच्छा वो है कि मैं इस समय तुम्हारा ये जो अपमान इन लोगों ने किया है, मैं एक एक शख्स को यहां पर खत्म करूं अपने हाथों से, तब जाकर मेरे ये जो दिल की आग है वो ठंडी होगी, यहां तक कि ये जो बैठे हुए हैं ना तुम्हारे पति, इन सबको मुझे खत्म करना है। ये जो बैठे हुए हैं तुम्हारा पति अपने आप को मानते हैं भगवान, कहे मुझे इनको भी खत्म करना है, परंतु मैं इनको खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि इनको खत्म मैं कर दूं तो इससे बड़ा दंड तुमको और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुमको इतना मानता हूं द्रौपदी, और तुमको मैं पुरस्कृत करना चाहता हूं, दंडित तो छोड़ दो, इसलिए मैं इन पांचों पांडवों की जान बख्शूंगा तुम्हारे लिए ताकि तुम विधवा ना हो। ये किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। तो सोचो बाकियों के विषय में भगवान क्या ऐलान कर रहे थे। और ये द्रौपदी इतना सहन करने के बावजूद द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की हर समय ऋणी रही। ये नहीं कि केवल साड़ी भगवान ने दी, इसलिए जब वो प्रसंग आया 60,000 दुर्वास मुनि और उनके शिष्य, और अक्षय पात्र में से द्रौपदी खा चुकी थी, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय जब प्रकट होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि मुझे उस अक्षय पात्र में से कुछ खिलाओ। भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी समस्या सुलझाने के लिए आया हूं। उस समय जब भगवान द्रौपदी से मांगते हैं कुछ भोजन, तो द्रौपदी का उद्गार इतना सुंदर है। द्रौपदी भगवान से कहती हैं कि भगवान, आज दुर्वास मुनि और दुर्वास मुनि के 60,000 शिष्य, चाहे जितने भी ऋषि मुनि आकर मुझे श्राप दे दें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, परंतु मेरे जो सबसे आराध्य प्रिय आप हो, आपको मैं भोजन नहीं खिला पा रही हूं, इससे बड़ा दुख इस समय, इससे बड़ा डर, इससे बड़ा भय इस समय और कुछ नहीं है मेरे जीवन में। सोचिए, वो जो टेंशन की स्थिति थी कि 60,000 लोगों को और वो भी दुर्वास मुनि के शिष्यों को कोई कैसे खिलाएगा, द्रौपदी को उसका बिल्कुल भय नहीं था। जब भगवान ने आकर मांगा द्रौपदी से, तो द्रौपदी कहती है कि मुझे आपको नहीं खिलाने का जो दुख हो रहा है, उससे बड़ा दुख कुछ है ही नहीं। और कभी भगवान के सामने उन्होंने ये दुख, अब सोचो कि ये कि भगवान को न खिला पाना और असत सभा में जो द्रौपदी के साथ हुआ, जो अभी हमने सुना, हम लोग अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता तो क्या हम उस दिन तक क्या धर्म का कुछ पालन करते? कर्ण का जब वध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण के मन में फिर भी कर्ण के प्रति थोड़ी करुणा बची हुई थी, परंतु कर्ण ने एक वाक्य कहा उस समय पहिया निकालते समय। कर्ण कहता है कि धिक्कार है इस धर्म के ऊपर, इंग्लिश में यदि कहा जाए टू हेल विद दिस धर्म, जिसका मैं पालन करने की कोशिश कर रहा था और ये धर्म ने मुझे नहीं बचाया, टू हेल विद दिस धर्म, I don't care about this dharma, I ridicule this dharma, I reject this dharma from my life. तो विकट परिस्थिति में कर्ण का असली रूप बाहर आ गया और द्रौपदी जो कि एक स्त्री थी, द्रौपदी के साथ जो इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अन्याय, जो आज हम लोग पेपरों में इतना सब बलात्कार सुनते पढ़ते हैं, आज भी इस प्रकार का अपमान किसी भी स्त्री का इतिहास में आज तक नहीं हुआ जितना द्रौपदी का हुआ, जो कि यज्ञ से पैदा हुई, यज्ञ से जो भी कुछ निकलता है वो शुद्ध होता है। तो ऐसी शुद्ध द्रौपदी के साथ जो हुआ, द्रौपदी ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। और यहां पर हम क्यों द्रौपदी का उदाहरण ले रहे हैं कि जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की और अश्वत्थामा को पकड़कर यहां अर्जुन लेकर आए हैं, तो अश्वत्थामा वहां पर बंदी, उसको बंधा हुआ देखकर द्रौपदी सबसे पहले कहती कि इसका बंधन छोड़ो पहले। और वो लोग तो भीम, अर्जुन और कृष्ण भी तीनों कह रहे थे कि अर्जुन द्रौपदी के सामने मारना है अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा की हत्या द्रौपदी के सामने करनी है। तो वो लोग ये सोचकर अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं और वो लोग ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कोई भी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जिस मां के पांच पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया गया है जिस व्यक्ति ने किया है, मां क्या बोलेगी? हाँ भाई, तुरंत इसकी हत्या करो। द्रौपदी स्पॉन्टेनियसली जब अश्वत्थामा को बंधा हुआ देख रही तो सबसे पहले कहती है कि इसको बांध क्यों रखा है, तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हम तो मारने की ताक में है और तुम खोलने के लिए बोल रहे हो। द्रौपदी कहती है ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। द्रौपदी कह रही है हमारे गुरु के पुत्र हैं। अब द्रोणाचार्य तो केवल द्रौपदी के पति के गुरु थे ना, परंतु द्रौपदी कहती है नहीं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, बंधन से मुक्त करो पहले अश्वत्थामा को। एक तो ये ब्राह्मण है, उसके ऊपर हमारे गुरु के पुत्र हैं, और उसके साथ साथ द्रौपदी क्या सोच रही है, द्रौपदी ये सोच रही है, देखो द्रौपदी कितनी रिफाइंड कल्चर की एक स्त्री थी द्रौपदी। द्रौपदी सोच रही है क्योंकि तब द्रोणाचार्य मर चुके थे, जब अश्वत्थामा ने ये कार्य किया द्रोणाचार्य मर चुके थे। तो द्रौपदी कहती है, द्रौपदी का कैलकुलेशन धर्म के अनुसार ये, द्रौपदी कहती है कि मेरे पति जिंदा हैं, पांचों पांडव जिंदा हैं, मेरे पांचों पुत्र मारे गए होंगे परंतु मेरे पति तो जिंदा हैं, और अश्वत्थामा को यदि अभी तुम मार दोगे तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, अश्वत्थामा की जो मां है, उसके पास कोई सहारा नहीं रहेगा। पति तो मर चुके हैं और एक जो बेटा है वो भी तुम मार डालोगे तो वो बेचारी जो विधवा है वो पुत्रहीन भी हो जाएगी। उस विकट परिस्थिति में इस प्रकार का कैलकुलेशन भी करना, ये केवल द्रौपदी जैसी धर्म परायण स्त्री ही कर सकती है। इमेजिन क्या कल्चर है द्रौपदी का। और ये युधिष्ठिर महाराज जब ये सुनते हैं, भगवान कृष्ण ये जो रीजन सुनते हैं, द्रौपदी कहती है कि मेरे कम से कम पांच पति तो जीवित हैं, मेरे लिए उनका तो सहारा है, अश्वत्थामा को मारने के पश्चात उसका कोई सहारा नहीं होगा द्रोणी का। तो भगवान कृष्ण वो इंप्रेस होते हैं, उनका सीना फूल जाता है द्रौपदी की ये बातें सुनकर। युधिष्ठिर महाराज सारे वहां पर ये सुनकर, द्रौपदी की बात सुनकर वो सब द्रौपदी का गुणगान करते हैं, यहां तक कि देवता वो ऊपर से पुष्प की वर्षा करते हैं कि आज दिन तक द्रौपदी जैसी सहनशील, द्रौपदी जैसी धैर्यवान और द्रौपदी जैसे धर्म परायण स्त्री न तो हुई है न होगी। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द विल ऑफ कृष्णा, कि ये है हमारे धर्म ग्रंथ के धर्म गुरु। इसलिए बड़े बड़े गुरु जनों ने द्रौपदी को अपना गुरु माना है। लोग कहते हैं ना कि अरे वैदिक संस्कृति में आप क्या स्त्रियों को नीचा बोलते हो, पुरुषों को ऊंचा बोलते हो। द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के सामने नतमस्तक हुए और द्रौपदी से क्षमा मांगी, और द्रौपदी से उन्होंने इसके पश्चात कहा कि द्रौपदी मेरे प्रेरणा की स्रोत तुम हो। सारे पांडवों ने द्रौपदी को अपने प्रेरणा का स्रोत माना, कुंती महारानी ने द्रौपदी को अपने प्रेरणा का स्रोत माना, और अंततः भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू लाकर द्रौपदी के सामने गिरकर कहते हैं, द्रौपदी मैंने मेरे इस अवतार में मेरे हृदय के अंदर जो तमन्नाएं थी धर्म के स्थापना करने की, वो सब मैंने सब कुछ किया। ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं की, भगवद गीता को सुनाया, इतने जो अधर्मी थे उनका नाश किया, तो जाते जाते मुझे इन सब पर फक्र है जो मैंने किया। परंतु द्रौपदी एक चीज को लेकर जिंदगी भर मैं अपने आप को कोसूंगा। भगवान कह रहे हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी मैं अपने आप को जिंदगी भर कोसूंगा, मैं अपने आप को जिंदगी भर क्षमा नहीं कर सकता। द्रौपदी किस बात के लिए कोसूंगा कि जब द्रौपदी तुमने मुझे बुलाया तो मेरे आने में थोड़ी देरी हुई, वो जो मैं देरी कर दिया आने में, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा द्रौपदी उसके लिए। हो सकता है तो किसी दिन द्रौपदी तुम मुझे क्षमा करो तो हो सकता है कि ये मेरे अंदर जो रंज है वो दूर हो पाए। भगवान अपनी आंखों में आंसू लाते हुए द्रौपदी के सामने गिरकर जाते जाते ये बात कहे। तो ये है द्रौपदी का चरित्र। और हमें फक्र होना चाहिए, कृष्ण प्रभुपाद ने हमें ये जो भागवत धर्म दिया है जिसके अंदर ऐसे ऐसे महानुभाव जिनका चरित्र सुनकर पढ़कर हम हमारे जीवन को इस प्रकार का चरित्रवान जीवन बना सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बोलो श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती द्रौपदी देवी की निधाय, गौर प्रेमानंदी। और भी बहुत से उदाहरण थे तो अभी समय का भाव है, अगली बार हम और नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के कौन कौन से और उदाहरण हैं उसको लेंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? या
हरे कृष्ण प्रभु,
देयर इज ऑलरेडी समवन विद द माइक, आफ्टर दिस।
हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत हैवी लेक्चर था। अभी भी शरीर हिल रहा है एक्चुअली ऐसे एग्जाम्पल सुन के। गोविंद इच्छा और मीन्स कृष्णाज विल एंड आर ओन स्वीट विल, स्वीट विल कॉन्सेप्ट हमने सुन रखा है। पूरी महाभारत का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे हम अगर, तो जो इवेंट्स हुए हैं ब्रॉडर वे में, कृष्णाज विल वॉज एग्जीक्यूटेड। बीच बीच में जो ये एग्जाम्पल्स हुए हैं, ऐसा सुना है कि जैसे गुलाब के फूल को रौंदा जाए तो सुगंध और अच्छी उगती है, द्रौपदी के जीवन में पूरा ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग, कैसे रौंदा गया उनको एक तरह से, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो सुगंध आई है वो सिर्फ वैष्णव समझ पा रहे हैं। एक कॉमन मैन अभी भी उनको उस एंगल से नहीं देख पाता है। और ये शाश्वत रूप से चलेगा आगे भी, क्योंकि हर एक युग में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो इस लेवल तक आने के लिए टाइम लगेगा उनको, इस एटीट्यूड से देखने के लिए ऐसे एग्जांपल्स को। तो व्हाई कृष्णा डज टू हिज इंटीमेट एसोसिएट्स इन दिस सिचुएशन, व्हाई ही मेक्स दिस, ही क्रिएट्स दिस सिचुएशन। और फिर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कृष्णाज विल वॉज इंटरवेनिंग द इंडिविजुअल्स विल, थोड़ा डाउट आ रहा है प्रभु जी। आई होप आई एम एबल टू प्रेजेंट माई क्वेश्चन।
या फर्स्ट पार्ट जो आपने पूछा कि इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल भगवान क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, कॉमन मैन उसको नहीं समझ पाएगा या झेल पाएगा, ये प्रश्न है ना आपका। उल्टा जब ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स कॉमन मैन देखता है तो भगवान जानबूझ के ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर देते हैं कॉमन मैन के लिए। हालांकि वैष्णव तो हैं ही, वो तो इंस्पिरेशन लेते ही हैं कि उसको किस तरीके से देखना है हमको, कि यदि कोई इस हद तक गुजरने के बाद, सहन करने के बाद भी कृतज्ञ रहता है तो हम लोग ये छोटी मोटी कंप्लेंट्स लेकर वो कॉमन मैन को शर्म आएगी ना, है कि नहीं? अगर द्रौपदी के साथ या पांडवों के साथ इतना एक्सट्रीम डिग्री में रौंदा नहीं जाता अगर उनको, और बहुत साधारण तरीके से कि भाई चलो उन्होंने एक बार मांगा कि हस्तिनापुर का राज्य उनको मिलना चाहिए या फिर दुर्योधन तुम सुधर जाओ, तो दुर्योधन एक दो बार गलती कर सुधर गया, सब कुछ हो गया। तो लोग इसको जब सुनते पढ़ते देखते तो क्या सोचते कि फिर हमें और उनमें अंतर क्या है। कई बार बोलते कि भाई हमारे साथ ज्यादा हो रहा है, उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। लेकिन भगवान ने इतना ऊपर वो स्टैंडर्ड कर दिया है कि कोई वहां तक अपने आप को इक्वेट ही नहीं कर सकता। यहां पर हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्या? किसी को नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग रही है तो उसमें संतुष्ट नहीं है। किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे सुनते नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे? हाँ, पेट साफ नहीं होता, बच्चे सुनते नहीं है, हाँ लोन ले रखा है, ये वो, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे? तो कोई अपने आप को इक्वेट न कर सके और उनको ऑर्डिनरी न ले, इसलिए भगवान उसको ऐसे एक्सट्रीम। जैसे कि आजकल आप देखो ये जो मूवीज वगैरह में ये लोग प्लॉट्स लेते हैं तो उसमें एक्सट्रीम दिखाते हैं ना, वो लोग एक्सट्रीम इसलिए दिखाते हैं कि वो एक्सट्रीम एक्शन, एक्सट्रीम ट्रेजेडी, एक्सट्रीम ट्रेजेडी को देखने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ भाई उनके जज्बात हिले हैं, है ना। जैसे आप कह रहे हो कि अभी तक हिल रहे हो आप आज की क्लास सुनकर, अगर द्रौपदी के जीवन में ये सब कुछ नहीं होता तो हम अपने घर से ही हिलते नहीं, यहां बैठ के हिलने के बजाय घर से ही नहीं हिलते हम तो। तो क्यों, ऐसा नहीं कि हम बहुत कोई पहुंचे हुए वैष्णव हैं, हम भी वो स्ट्रगलिंग कॉमन मैन ही हैं। तो भगवान जानबूझकर, इसलिए जो हम कहते हैं फॉर अ नियोफाइट कृष्णा पुट्स अ नियोफाइट इन प्रॉब्लम फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर अ ग्रेट डिवोटी ही पुट्स फॉर ग्लोरिफिकेशन। तो भगवान उनका गुणगान और कराना चाहते हैं। और प्लस एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो मैंने अभी बात की उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सरेंडर का स्टैंडर्ड इतना ऊपर रखे हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई तुमको यदि मुझे प्राप्त करना है, यू कैनॉट रिमेन अ कॉमनर एंड अचीव कृष्णा, यू हैव टू बिकम अनकॉमन बिकॉज कृष्णा इज अनकॉमन, कृष्णा इज नॉट कॉमन। सो ओनली दोज हु आर बियॉन्ड बींग कॉमन दे कैन अचीव कृष्णा। सो कृष्णा वॉन्ट्स टू सेट द हाइएस्ट स्टैंडर्ड फॉर दोज हु क्वालिफाई टू बिकम हिज डिवोटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन।
सेकेंड पार्ट, कृष्णाज इंटरवीनिंग इन आर लाइफ टू गेट हिज विल सेटिस्फाइड इन अ ब्रॉडर वे।
विच विल?
अब इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स महाभारत में हुए हैं, विदाउट कृष्णाज परमिशन दे कुड हैव नॉट हैपेंड एक्चुअली, तो वो हुए हैं। तो दैट मीन्स दिस इवेंट्स हैड कृष्णाज एक्सेप्टेंस समहाउ,
द एट्रोसिटीज व्हाट दे अंडरवेंट।
यस,
या
लाइक इट इज सेड दैट कृष्णा डजंट कम इन आवर स्वीट विल, वी हैव हर्ड दैट एग्जांपल।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट विल इज ओनली ऑफ कृष्णा, आवर्स इज ओनली विल।
या बट इट इज सेड दैट वी हैव बीन गिवन दैट
फ्री विल
कॉन्सेप्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में समहो कृष्णा हैज मेड हिज विल सेटिस्फाइड।
नो, सी कृष्णा व्हेन इट कम्स टू हिज डिवोटीज और स्ट्रगलिंग डिवोटीज और इवन डीमंस, ऑल ऑफ हिज पार्ट एंड पार्सल्स, कृष्णाज डिजायर इज समहो द अदर दे शुड गेट प्यूरिफाइड and they should come out of this prison, of this problematic situation. Now if it takes for someone to go through that and achieve that level, that is Krishna's will. And if somebody doesn't have to go through that and still it can achieve that level, that is also, those examples are also there. The devotees who didn't have to go through any of this. And then you have examples of Pandavas. So therefore, all these Bhagavatam ke jo examples hai na, ye examples bahut exceptional examples hai. Aur isliye Bhagavatam ek aisa scripture hai jiske andar Shukdev Goswami, Vyasdev ji, vishesh rup se Vyasdev ji, unko exceptional examples hi include karane the. Taki forever, for all time to come, हमारे लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड भागवतम के अंदर रहे कि भाई हाँ, चाहे आप कोई भी वर्ण आश्रम उम्र के लोग लो, सब कुछ भागवतम मेंशन। कोई बच्चा कहे कि मेरे लिए क्या है, बच्चों के लिए भी है। कोई बूढ़ा कहे मेरे लिए क्या है, बूढ़ों के लिए भी है। कोई अगर स्त्री कहे कि मैं तो भाई एक गृहिणी हूँ, मेरे लिए क्या है, उसके लिए भी। कोई वॉरियर बोले उसके लिए भी है, कोई भी कैटेगरी आप लो, सबके लिए एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स, रोल मॉडल्स भगवान ने श्रीमद् भागवत में दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके जीवन में कोई ऐसा बहुत ही सुपरलेटिव एडवेंचरस चीज नहीं हुई वो भगवान के भक्त नहीं है या नहीं बने, उनका मेंशन भागवतम में नहीं होगा। बट देयर हैव बीन, जैसे इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन के अंदर हम सुनते हैं बड़े बड़े सन्यासी जैसे तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज इत्यादि, इनके बारे में हम सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो रेगुलर डिवोटीज हैं उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हैं कि वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं हुए। मैं आपको स्तोक कृष्ण प्रभु का उदाहरण देता हूं। अब स्तोक कृष्ण प्रभु को पूरे इस्कॉन में कितने लोग जानते थे, यहां पर भी आप लोगों में से कितने लोग स्तोक कृष्ण प्रभु, एक चौपाटी, हमारे इस्कॉन चौपाटी के कांग्रेगेशन डिवोटी हुए, पहले वो ब्रह्मचारी थे, क्या कॉन्शियसनेस उनका, ही वॉज जस्ट अ कॉमन इस्कॉन डिवोटी, हार्डली एनीवन बियॉन्ड राधा गोपीनाथ कांग्रेगेशन इवन न्यू स्तोक कृष्ण प्रभु। स्तोक कृष्ण प्रभु को कैंसर हुआ था, वो कैंसर से उनकी मौत हुई, स्तोक कृष्ण प्रभु केवल 32 साल के थे जब वो मरे, 32 साल के। और उनका जो एक नजरिया अपने आप को देखने का, वो ऐसा था कि हिला देने वाला, आप जो बोल रहे ना वैसा है। जब वो डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि भाई यू आर बियॉन्ड मेडिकेशन, और कह दिया यू ओनली हैव दीज मेनी मंथ्स लेफ्ट फॉर यू टू लिव, तो स्तोक कृष्ण प्रभु के पास प्रैक्टिकली एवरी डे, कभी निरंजन महाराज फोन पे, रशिया से फोन करते, कभी गिरिराज महाराज लॉस एंजलिस से फोन करते, कभी राधानाथ महाराज जहां पर भी लंदन से फोन करते, रोज उनको ऐसे बड़े बड़े सन्यासी के फोन कॉल आते थे। तो स्तोक कृष्ण प्रभु, उन्होंने कहा, उनके अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, इफ आई हैव बीन कॉल्ड बाय निरंजन महाराज, गिरिराज महाराज, राधानाथ महाराज, दिस कैंसर वॉज वर्थ इट, वर्थ इट। और वो कह रहे थे कि अगर ये कैंसर नहीं हुआ होता तो ये बड़े बड़े सन्यासी कभी मेरे को कॉल करते थे। दिस इज कॉल्ड द सब्सटेंस ऑफ अ डिवोटी। वो बोले कि दिस कैंसर इज वर्थ इट दैट आई एम गेटिंग द वाणी एसोसिएशन ऑफ दीज ग्रेट सोल्स। और फिर फाइनली राधानाथ महाराज जाते समय उनको कहे, स्तोक कृष्ण प्रभु आई एम प्राउड ऑफ यू। गुरु अपने शिष्य को, शिष्य के अंतिम सांसें हैं उस समय, अगर गुरु ये कहे अपने शिष्य को दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, सो ऑल ऑफ दैट कैंसर एंड वॉज वर्थ इट। भक्ति तीर्थ महाराज वो बोलते थे, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, नॉट जस्ट वन फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड्स आर दीज कैंसर सेल्स, बिकॉज दीज कैंसर सेल्स आर गिविंग मी सो मच पेन दैट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग और एनीवन एल्स अदर देन कृष्णा एंड डिवोटीज। सो हु कुड बी अ बेटर फ्रेंड, आज फ्रेंडशिप डे है ना, आज फ्रेंडशिप डे है ना। बहुत सुंदर एक मैं अपने समर्पण में सुना रहा था फ्रेंडशिप के ऊपर। दूध और पानी के बीच में दोस्ती हुई। अब ज्यादातर दूध और पानी, उनमें दोस्ती ये नहीं देखी जाती ना, परंतु दूध और पानी के बीच में दोस्ती हुई तो पानी ने दूध से कहा कि मैं तुम्हारा उम्र भर ऋणी रहूंगा। दूध से पानी कहता है कि मैं तुम्हारा उम्र भर ऋणी रहूंगा क्योंकि तुमने मुझ जैसे पानी को भी तुम्हारे दाम पर बिकवाया। उसी दाम पर पानी भी उसके साथ बिक रहा है ना, कि तुमने तुम्हारे ही दाम पर मुझ जैसे पानी को बिकवाया, इसलिए मैं ये वचन देता हूं कि जब तुम्हें उबाला जाएगा तो सबसे पहले मेरे प्राण छूटेंगे। जब दूध को उबाला जाता है तो सबसे पहले पानी उड़ जाता है ना, तो कहता है सबसे पहले मेरे प्राण छूटेंगे। दूध कहता है पानी से कि जब मैं ये देखूंगा कि तुम जलकर मुझे छोड़कर जा रहे हो तो क्या मुझसे सहन होगा। तो दूध पानी से कहता है उसी वक्त मैं उफन कर उस आग को बुझाने के लिए नीचे गिरूंगा। और फिर पानी कहता है दूध से कि यदि तुम उफन रहे होगे जब, तो मेरे ही छींटों से तुम फिर से उस पतीले में जाओगे, मैं फिर से आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। तो ये दूध और पानी की फ्रेंडशिप, और फिर फाइनली इनकी फ्रेंडशिप के विषय में बताया गया है कि जब खटास आती है तब दूध और पानी अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही आज फ्रेंडशिप डे है, हमारे सही फ्रेंड भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने गीता में कह दिया है सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। और जो हमारे वैष्णव जन हैं वो हमारे असली फ्रेंड्स हैं, परंतु उसके अंदर अब ये मत कहो कि भाई तू पानी मैं दूध। जब खटास आ जाएगी उसके अंदर, खटास मतलब जब कली, मूर्तिमान कली हम वैष्णव के अंदर दरार पैदा करता है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, तो वो खटास के समान है। तो हमारा यही प्रयोजन होना चाहिए आज के फ्रेंडशिप डे के दिन कि हम श्री राधा मदन गोपाल जी से प्रार्थना करें कि हमारी मित्रता जैसे दूध और पानी की मित्रता बताई गई है, जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता बताई गई है, जैसे कृष्ण अर्जुन की मित्रता बताई गई है। जब अग्नि एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कुछ आशीर्वाद मांगो, मैं देना चाहता हूं। कौन? अग्नि कहते हैं मैं देना चाहता हूं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अग्नि से कहते हैं कि मैं एक ही आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरी और अर्जुन की जो मित्रता है वो इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। ये आशीर्वाद भगवान ने एक देवता से मांगा। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप डे। तो हम भगवान से ये आशीर्वाद मांगे, श्रील प्रभुपाद गुरुजनों से आशीर्वाद मांगे कि हमारे जीवन में भगवान आप चाहे हम रौंदना चाहे हमें, चाहे आप हमको फूल माला बनाकर उसके अंदर डालना चाहे, चाहे जिस प्रकार से आश्लिष्य वा पादरताम विनष्ट वा, ये न केन प्रकारेण भगवान आप हमें शुद्ध कर आपकी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ यही है और वही प्रयोजन है भगवान का। भगवान कोई सेडिस्ट नहीं है कि हमको दुख देने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, नहीं, भगवान यही चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये सारे बद्ध जीव इस जेल से बाहर निकलें और इस कारागृह से बाहर निकलकर हम हमारे नित्य धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हों। और उसके लिए चाहे कोई भी कीमत देना पड़े, यहां पर तो लौल्यम मांग रहे हैं भगवान, एंथुजियाज्म, और है नहीं इसलिए हमको इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना सब कुछ पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि लौल्यम नहीं है। और वो गोवर्धन हमें सिखा रहे हैं क्या लौल्यम। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की, शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, इताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
इस गृह शिक्षाष्टकम प्रभु की।